नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के झारसुगुड़ा में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं दूरसंचार, रेलवे, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, ग्रामीण आवास सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि बहुपक्षवाद के दबाव के समय में ब्रिक्स तर्क और रचनात्मक बदलाव की एक मजबूत आवाज बनकर खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा कि इस अशांत दुनिया में ब्रिक्स को शांति निर्माण, संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के संदेश को मजबूत करना चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संबोधन की तीखी और कड़े शब्दों में आलोचना की है। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद का महिमा मंडन करने और भारत पाकिस्तान संघर्ष के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में सचिव पेटल गहलोत ने कड़े शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि आतंकवाद का महिमा मंडन करना पाकिस्तान की विदेश नीति का केंद्र है। उन्होंने भारत के आतंकवाद रोधी अभियानों, खासकर ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया, जिसका लक्ष्य पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीदके में आतंकी ठिकानों को निशान बनाना था। भारत में फलस्तीन के राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश ने फलस्तीनियों का समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशंसा की है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शावेश ने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी का समर्थन कर रही है, जो फलस्तीनी शरणार्थियों की सहायता के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि भारत वर्तमान में फलस्तीन में करोड़ों डॉलर की लागत से एक अस्पताल परियोजना पर काम कर रहा है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत स्वतंत्र फलस्तीन के निर्माण की संभावना को खारिज कर दिया है। इसराइल ने इसे अपने देश के लिए आत्मघाती बताया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कल राष्ट्रपति नेतन्याहू ने फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन सहित पश्चिमी देशों की फलस्तीन को मान्यता देने की आलोचना की। सम्मेलन में इसराइल के साथ साथ एक संप्रभु फलस्तीन और दोनों के शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का आह्वान किया गया था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हथियार नहीं डालने और बंधकों को रिहा नहीं करने पर गजा में हमास का सफाया करने की चेतावनी दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के लिए केंद्र सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम वेज एंड मींस एडवांस की सीमा 50,000 करोड़ रुपए होगी। वेज एंड मींस एडवांस एक ऐसी सुविधा है जो सरकार और केंद्र के विभिन्न शाखाओं की भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने की अनुमति देती है। केंद्रीय बैंक ने कल एक बयान में कहा कि वेज एंड मींस एडवांस पर केंद्र सरकार के परामर्श से निर्णय लिया गया है। इसमें आगे कहा गया है कि जब केंद्र वेज और मींस एडवांस सीमा का 75% उपयोग कर लेगा तो भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में नए ऋण जारी कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे बीएसएनएल का 4G स्टेक स्वदेशी भावना का प्रतीक है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक लेख को सोशल मीडिया पोस्ट पर साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 92,000 से ज्यादा साइटों के साथ 2.2 करोड़ भारतीयों को जोड़ने वाला बीएसएनएल का 4G स्टेक भारत की निर्भरता से आत्मविश्वास की ओर की यात्रा को दर्शाता है। ये रोजगार, निर्यात, राजकोषीय पुनरुद्धार को बढ़ावा देता है और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को भी आगे बढ़ाता है। असम में बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद चुनावों में स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। उसने 40 सदस्यीय परिषद में 28 सीटें जीती हैं। सत्तारूढ़ यूपीएल को 7 सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा को अंतिम परिणामों में 5 सीटें मिली। परिषद के लिए मतदान इस महीने की 22 तारीख को हुआ था। मौसम विभाग ने मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी भागों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।